मेरे प्रिय श्रोताओं, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। दोस्तों, आज 30 मार्च 2017 है और आज के इस afeis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मैंने आज के लिए जो विषय चुना है फ्रेंड्स, उस विषय को आप में से ही किसी एक मित्र ने सुझाया है और इस विषय को सुझाए हुए भी मुश्किल से दो एक दिन ही हुए होंगे। और इस विषय को शीर्षक मैंने दिया है, न किए का पछतावा। सच पूछे तो जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, ये शब्द भी मैंने उन्हीं के ईमेल से ज्यों के त्यों लिए हैं, न किए का पछतावा। बहुत सी चीजें हम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, और चूंकि कर नहीं पाते तो कुछ समय के बाद हम पछताते हैं। बहुत प्यारा विषय है, बहुत अच्छा विषय है, और सच पूछिए तो बहुत ही व्यावहारिक है और ऑलमोस्ट सबसे जुड़ा हुआ है, सबसे, यहां तक कि उससे भी जिसे आप अपने जीवन का या उस युग का सबसे सफल और महान व्यक्ति मानते हैं। यह समस्या उससे भी जुड़ी हुई समस्या है और दोस्तों, मानकर चलिए इस समस्या का अंत नहीं है। अब आप कहेंगे कि जब अंत ही नहीं है तो फिर मैं इस पर बात क्यों कर रहा हूं। मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि भले ही इस समस्या का कोई अंत न हो लेकिन मिनिमाइज कर सकते हैं, इसके संख्या को कम कर सकते हैं, और यही हम कर भी पाते हैं। आप देखिए कि जिंदगी की कौन सी चीज ऐसी है जिसको आप पूरी तरह से रोक लेंगे? क्या दुख को पूरी तरह से रोक लेंगे? क्या निराशा को पूरी तरह से रोक लेंगे? क्या असफलता को पूरी तरह से रोक लेंगे? क्या क्रोध को पूरी तरह से रोक लेंगे? ईर्ष्या है क्या? तृष्णा है? इच्छा है क्या? पूरी तरह से हम रोक सकते हैं? नॉट एट ऑल। तो एक सही और गलत व्यक्ति में, एक असफल और सफल व्यक्ति में जो अंतर है वो क्या है? अंतर रोक लेने का नहीं है कि एक में बहुत है और दूसरे में बिल्कुल नहीं है, नॉट एट ऑल। अंतर सिर्फ इसका है कि एक में कुछ ज्यादा है तो दूसरे में थोड़ा कम है या मिनिमम है, बस इतना ही। इसकी शुरुआत में करना चाहूंगा फ्रेंड्स रावण के प्रसंग से। ये रामचरितमानस में तो नहीं है लेकिन वाल्मीकि रामायण आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि जब रावण युद्ध भूमि में हार करके और पड़ा हुआ था, उस समय राम लक्ष्मण को उससे राजनीति की बात सीखने के लिए भेजते हैं कि जाओ और तुम रावण से बातें सीखो, राजनीति की बातें सीखो। सोचिए कि अपने पत्नी के अपहरणकर्ता से, अपने दुश्मन से भी अगर ज्ञान मिल रहा है क्योंकि वो उसमें निपुण है, तो वह भी हमारे लिए पूज्य है, ध्येय है, गुरु है, श्रद्धेय है। ये भारतीय परंपरा, भारतीय परंपरा क्या, मैं तो समझता हूं कि ये शायद मानवीय परंपरा ही होनी चाहिए। राम की विशालता देखिए, उदारता देखिए और देखिए कि वो उसमें कहना क्या चाह रहे हैं कि ज्ञान, अगर कोई भी आपसे किसी मायने में श्रेष्ठ है तो आप उसे स्वीकार कीजिए, उसके पास जाइए, उससे लीजिए, चाहे वो आपका कट्टर दुश्मन ही क्यों न हो, यहां तक कि आपका अपमान करने वाला ही क्यों न हो, आपका बहुत ज्यादा नुकसान करने वाला भी क्यों न हो, लेकिन आप उसके पास जाइए और उसके पास जो पूंजी है वो तो लीजिए, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो तो जा रहा है, चला जाएगा। आप शायद किसी चीज से रिक्त हो जाएंगे, आप में कुछ कमी रह जाएगी, तो एक मौका है उस कमी को पूरा करने का। अगर कमी आपको महसूस नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, जो कुछ है उसको बढ़ाने का तो मौका है, वह तो कर लीजिए। खैर मित्रों, जब लक्ष्मण जाते हैं तो रावण बहुत सी बातें कहते हैं, उसमें से उन्होंने एक बात कही थी कि लक्ष्मण, कि जो कुछ सोचो उसको सोचते मत रहो, उसको कर डालो, नहीं तो बाद में तुम पछताते रह जाओगे। मैं ये सोचता था ये करूंगा, ये करूंगा, मैंने ये सोच रखा था, मैंने सोचा था कि मैं स्वर्ग तक सोने की सीढ़ियां बना दूंगा, ये है, लेकिन आज यहां युद्ध भूमि में छत विक्षत पड़ा हुआ मैं केवल पछता सकता हूं, अफसोस कर सकता हूं, काश कि मैंने उस पर काम शुरू कर दिया होता। दोस्तों, रावण क्या है, आप उसके चरित्र को छोड़िए कि वो उन्होंने सीता का अपहरण किया इसीलिए हम उन्हें विकृति का प्रतीक मानते हैं और एक अंधेरे का प्रतीक मानते हैं, है ना, हम उन्हें राक्षस मानते हैं, जो भी है, लेकिन उसमें क्वालिटी तो है, उसके जैसा विद्वान तो कोई नहीं हुआ, उसके जैसा भक्त भी कोई नहीं हुआ, उसके जैसा शक्तिशाली भी कोई नहीं। तो ये तो गुण उसमें थे ना, ज्ञानी थे, तभी तो राम अपने छोटे भाई को भेज रहे, नहीं तो राम भी तो शिक्षा दे सकते थे। लेकिन जानते हैं कि इस मामले में मैं रावण से कमतर हूं। ऐसा रावण, ऐसा शक्तिशाली, ऐसा ज्ञानी, ऐश्वर्य युक्त और राजनीति का पंडित भी पछता रहा है। तो मैंने जो शुरुआत में कही मित्रों कि यह जो पछतावा है यह हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। इसीलिए शून्य करने के बारे में तो हमें सोचना भी नहीं चाहिए, लेकिन इस पर सोचना जरूर चाहिए। सोचना इसलिए चाहिए कि जब हम इस पर सोचेंगे, देखिए सीधा सा सिद्धांत है कि जिस पर आप चिंतन करना शुरू करेंगे, जिसके ऊपर सोचना विचारना शुरू करेंगे, उसमें सुधार आना शुरू हो जाएगा। हां, सिर्फ अगर आप चिंता करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। हम ज्यादातर चिंता करते हैं, हमारी जो समस्या है हम चिंतन नहीं करते हैं। चिंतन का मतलब है कि उस पर तर्क वितर्क करना, उसके कारण को फाइंड आउट करना, किसके पीछे कारण क्या है। जैसे मान लीजिए कि मैं सोच रहा हूं कि मैं आज यह काम करूंगा, मैं आज इतनी पढ़ाई करूंगा, मैं नहीं कर पाता। रात में जब मैं सोने जाता हूं तो मेरा मन थोड़ा सा अनमना सा है। देखिए मैं मेरा शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि इस मेरा में आप सब भी शामिल हैं। इसलिए मित्रों ये मेरा जो मैं संबोधन होता है उसको आप लोग प्लीज इसी तरीके से ले लीजिएगा, क्योंकि मैं आप सबके बिहाव पर ही बात रखने की कोशिश करता हूं, मैं अपनी बात नहीं रखता, बोलने के दौरान मेरा शब्द आ जाता है। तो मैं जब जाता हूं और पछताता हूं, थोड़ी देर के लिए नींद उड़ जाती है, करवटे बदलता हूं, अपने को कोसता हूं, कसम खाता हूं कि नहीं कल से ऐसा नहीं होगा। और मजेदार बात है कि जब कल आता है कल भी वैसा ही होता है और फिर मैं पछताता हूं। यहां मैं एक बात आपके ध्यान में लाना चाहूंगा फ्रेंड्स, और वो ये, एक शब्द है पछताना और दूसरा शब्द है प्रायश्चित करना। पछतावा क्या होता है? पछतावा में सिर्फ अफसोस है। मैं इसे समझता हूं कि एक मानसिक विलास है, एक मानसिक खेल है, मानसिक रोग तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी एक केवल एक खेल है, सांप सीढ़ी का खेल है, ऊपर नीचे चल रहे हैं, होना जाना कुछ नहीं है, ना आप स्वर्ग में पहुंच रहे हैं ना आप नरक में जा रहे हैं, लेकिन लूडो पर आप यही सब सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है, होता कुछ नहीं है। पछतावा कहीं ना कहीं उसी तरह का होता है, लेकिन उसकी एक बहुत अच्छी बात तब होती है जब वो पछतावा प्रायश्चित में कन्वर्ट हो जाए। प्रायश्चित क्या है? प्रायश्चित केवल मानसिक पछतावा नहीं है कि आप अफसोस कर रहे हैं। प्रायश्चित का मतलब है कि मैंने जो गलती की है उसकी सजा मैं भुगत रहा हूं, और मुझे कोई बाहर का व्यक्ति सजा नहीं दे रहा है। देखिए बाहर का जो व्यक्ति सजा देगा वो दंड है, वो प्रायश्चित नहीं है, याद रखिए, वो दंड है। दंड के पीछे प्रायश्चित की भावना छिपी हुई है, या मैं तो समझता हूं कि शायद भय की भावना ज्यादा छिपी हुई है कि इस आदमी को देखो, इसने ये गलती की थी, इसके लिए इसको तिहाड़ जेल भेज दिया गया है, तो तुम भी ऐसी गलती मत करना, नहीं अगर तुमको भी तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा। तो ये दूसरों के लिए भय पैदा करना दंड का मूल उद्देश्य होता है। ठीक है, अब एक अलग विचार भी चला है कि ये सुधार भी करता है जो भी, लेकिन जो प्रायश्चित है वो स्वयं के द्वारा स्वयं को दिया गया दंड है, स्वयं के द्वारा स्वयं को दिया गया दंड। और क्योंकि हर समय आप दंड देंगे, खुद आप जान भी रहे हैं कि हां मैंने ये गलती की है। देखिए जैसे मैंने अगर कुछ सोचा कि मैं ये करूंगा और नहीं कर पाया, तो इसको तो मैं ही जान रहा हूं ना, दूसरा तो कोई नहीं जान रहा है, मेरा बॉस तो उसी के बारे में जान रहा है जो उसने कहा था और मैं नहीं कर पाया, तो वो उसके बारे में दंड देगा। लेकिन मैं जो चाह रहा था और जो नहीं कर पाया हूं सिर्फ मैं ही जानता हूं, तो मेरे पास अब दोनों विकल्प हैं। पहली बात, विकल्प जो है वो कि ठीक है मैंने नहीं किया, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, कभी नहीं करेंगे, तो मेरी चीज है, मेरा अधिकार है, क्योंकि अधिकारों की बात आज ज्यादा होती है, मेरा मन जैसा चाहे वैसा करूं, मेरे ऊपर कौन लगाम लगा सकता है, मैं अपना मन का मालिक हूं, अपना खुद निर्णय लेता हूं, इस तरह से करके मैं तर्क वितर्क करके उस चीज को ड्रॉप कर दूंगा। उसके बारे में मेरे मन में सच पूछे तो कुछ पछतावा भी नहीं आएगा, अगर पछतावा आ भी गया तो मैं अपने मन को इस तरीके से समझा लूंगा, फिर प्रायश्चित का तो सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन दूसरी ओर क्या होगा? दूसरी ओर होगा कि ठीक है आज मैंने ये नहीं किया है, इसके बारे में मैं पछता रहा हूं, तो अब सवाल यह है कि जो कल आएगा उसमें मैं इसे कैसे रोकूं? उसका एक उपाय है कि नहीं, आज का काम जो मैंने नहीं किया है कल मैं डबल काम करूंगा, और चाहे जो हो जाए वो करूंगा। सजा का मतलब आप ये मत समझिएगा कि मैं दो घंटे धूप में खड़ा रहूंगा या दंड बैठक करूंगा या खाना नहीं खाऊंगा, ये सजा नहीं है। इस तरह की सजा से तो मैं और ज्यादा अपने को नुकसान पहुंचाऊंगा। सजा इस तरह की होनी चाहिए, सजा का जो स्वरूप हो वो कि जो मैं मुझे करना था उसे कल मैं डबल करूंगा, तिबल करूंगा, मेरे ऊपर काम का बोझ बढ़ता चला जाएगा, लेकिन ये केवल लिखा पढ़ी के तौर पर पन्नों पर नहीं बढ़ेगा, ये वास्तव में बढ़ेगा। मुझे उसे कर्म के रूप में तब्दील करना होगा, उसे अंजाम देना होगा, यानी कि लगातार मेरे ऊपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और केवल बढ़ता ही नहीं चला जाएगा, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। एक दिन आप सरेंडर कर देंगे, क्योंकि अब तो स्थिति यह हो गई है कि आप कर ही नहीं सकते। आप रोज परीक्षा की एक डेट फिक्स हो गई है, कल पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, और पता लगा कि अगले दिन परीक्षा है और आपको सारा कुछ पढ़ना है, तो आप क्या कर लेंगे सिवाय इसके कि सरेंडर कर देंगे या कलेप्स हो जाएंगे? तो उसका तो कोई मतलब होता नहीं है। देखिए, मतलब होता है कि आज शाम को आपको पछतावा हुआ और कल आपने उसकी सजा भुगत ली, फिर मन क्या करेगा आगे चल करके? आपको ये लगने लगेगा कि भैया यहां से बचने का तो कोई उपाय नहीं है, और चूंकि बचने का उपाय नहीं है इसलिए ज्यादा बेहतर है कि जैसे भी हो, जो भी करना पड़े, आज इसको कर डालो, नहीं तो कल डबल करना पड़ेगा। अंततः इसमें मेरी कोई मदद करने के लिए सामने नहीं आएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, मुझे ही करना है, तो ज्यादा अच्छा है कि मैं इसे अभी ही कर डालूं। और आप सबने ये तो महसूस किया ही होगा मित्रों, कि जब हम करते हैं तो उससे एक अलग तरीके का संतोष भी मिलता है, सच्चा सुख तो उसी में ही होता है। तो दोस्तों, इस तरीके से मुझे लगता है कि जो प्रायश्चित है वो मूलतः एक बहुत पवित्र भाव है, और जो पछतावा है वहीं से प्रायश्चित का जन्म होता है, क्योंकि जिसके मन में पछतावा ही नहीं होगा, मान करके चलिए कि प्रायश्चित का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, यानी कि जो पछतावा की जो गंगोत्री है वहां से प्रायश्चित की गंगा निकलती है, और वो गंगा फिर हमें धोती है, हमें पवित्र करती है, हमें निर्मल बनाती है। और खासकर जो ज्यादातर पछतावा हो आते हैं मित्रों, वो एक ही आदत के कारण आते हैं, जहां तक मैं समझ, जो मूल आदत, एक ही आदत तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो मूल आदत है वह है टालने की आदत, कि किसी तरह से अभी न करना पड़े, अभी हम टाल लें। और टालने की आदत क्यों आत होती है? सीधी सी बात है, आलस्य के कारण। जो कर्मठ होंगे, जो कर्मशील होंगे, वो उसे टालेंगे नहीं, राइट? तो मित्रों, ये मैंने कुछ बातें आपसे न किए का पछतावा शीर्षक के तहत की हैं, और अगर इस पर आपको कुछ और विचार जानने हो या और किसी प्रश्न का उत्तर, जिज्ञासा का समाधान चाहिए, तो आप लोग मुझे ईमेल के जरिए सूचित करें, मैं उस टॉपिक को फिर से आगे बढ़ाऊंगा। अदरवाइज आप लोगों के खुले रूप में टॉपिक आमंत्रित हैं, आप लोग मुझे बताएं, मुझे बेहद खुशी होगी कि मैं एक ऐसे टॉपिक को लूं जो आप लोगों में से ही किसी ने सुझाए हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस लाइफ मैनेजमेंट को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।